फ्लैशबैक। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन सुन सुन, लड़के में क्या गुण। सुन सुन दीदी सुन, हे सुन 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 दीदी, अच्छे घर का लड़का है पर हकलाता है। मुंह पर दाग हैं चेचक के और पान चबाता है। पान चबाता है जब थोड़ी पीकर आता है। पीता है जब जुए में वो हार कर आता है। ताश भी रोज कहाँ, बस कभी कभी ही होती है। अच्छा डाका पड़े तभी तो रम्मी होती है। रोज कहाँ ऐसा होता है, डाके पड़ते हैं। आधे दिन तो बेचारे की जेल में कटते हैं। सुन सुन सुन, लड़के में क्या हुआ है आज तुम तीनों को बार बार एक ही गाना गाए जा रही हो? तुम्हारे गानों के कलेक्शन कोई लुटकर ले गया क्या? राधिका कॉलेज से आई ही थी कि उसकी तीनों छोटी बहनों ने एक साथ ही गाने की धुन छेड़ दी थी। चारों बहनों को गानों का शौक था और घर में हमेशा कोई ना कोई धुन छिड़ी ही रहती थी। जब वे इकट्ठे होते तो अंताक्षरी खेलने लगते और अपने जादुई पिटारे से एक गाने निकालकर खुद भी झूमते और दूसरे को भी नचाते। उनकी खिलखिलाहटों से ही घर में रौनक लगी रहती थी और माहौल भी खुशनुमा बना रहता था। पर आज राधिका अपनी बहनों के बदले हुए अंदाज को देखकर हैरत में थी, क्योंकि तीनों भंवरों जैसे उसके आगे पीछे मंडराते हुए एक ही गाने को गुनगुनाई जा रही थी और जानकर उसे सुना रही थी, शायद चिढ़ा रही थी। राधिका का सवाल सुनते ही उसकी एक बहन ने चंचल मुस्कान लबों पर बिखेरी और आंखों में चमक भरते हुए बेपरवाही भरे अंदाज में छट से जवाब दिया, नहीं दीदी, लेकर तो आपको जाएंगे, वो भी ब्याह कर। बोलते हुए वो खिलखिला उठी, जबकि अब तक उनकी मस्ती देखकर मुस्कुराती राधिका की मुस्कान एक झटके में गायब हुई थी और आंखें अविश्वास से फैल गई थी। क्या बकवास कर रही हो, इसे भी उनकी कोई शरारत समझकर राधिका उन पर नाराज हुई। पर इतने में उसकी दूसरी बहन बोल पड़ी, बकवास कहाँ कर रहे हैं दीदी, सच बता रहे हैं आपको। जल्दी ही आपको ब्याहने आपके पियाजी आने वाले हैं और अब तो हमारे जीजू की खोज भी शुरू हो गई है। एक बार फिर उसकी बहन ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा था। अपनी बड़ी दोनों बहनों की हाँ में हाँ मिलाते हुए अर्पिता भी उनकी शरारत में शामिल हो गई। और आज तो एक हैंडसम लड़के का रिश्ता भी आया है आपके लिए, अब जल्दी ही इस घर से आपकी विदाई होने वाली है। उसकी तीनों बहनें बहुत एक्साइटेड और खुश नजर आ रही थीं। वहीं राधिका अब भी इस हकीकत पर विश्वास ना कर सकी और इसे भी उनकी कोई शरारत समझकर उन पर भड़क उठी। अप्पू बकवास मत करो, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अप्पू समेत उसकी दोनों बहनें, जो अब तक जानकर उसे सता रही थीं और मजे ले रही थीं, एकदम से गंभीर हो गईं। डांट पड़ी तो अकल ठिकाने आई और तीनों ने तुनकते हुए एक साथ ही कहा, दीदी हम भी मजाक नहीं कर रहे, अगर आपको विश्वास नहीं तो मम्मी पापा से जाकर पूछ लीजिए। राधिका पलघर को उनके चेहरे देखती रही, शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि ये भी उसे सताने के लिए उनकी कोई नई शरारत है या हकीकत। जल्दी ही उसका भ्रम भी दूर हो गया, गुस्सा और नाराजगी कुछ कम हुई और चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। कौन लाया है रिश्ता और मम्मी पापा ने क्या जवाब दिया? राधिका ने जैसे ही सवाल किया, अर्पिता छट से बोल पड़ी, वो रुबीना आंटी नहीं थी जो पड़ोस में रहती थी, उन्हीं के जानने में है कोई। तारीफ तो बड़ी करके गई है और तस्वीर भी देकर गई है। दिखने में लड़का हैंडसम और गुड लुकिंग है, हमें तो बड़ा पसंद आया। यहाँ राधिका की जान हलक में अटकी थी। घबराहट के मारे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, टेंशन से सर फटने लगा था और उसकी बहनों के पैर खुशी से जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वे लड़का की तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी और उससे खासा इम्प्रेस नजर आ रही थी, जिससे राधिका खींच उठी और गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद तीनों ने एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखा, फिर नासमझी से कंधे उचकाते हुए उसके पीछे चल पड़ी। राधिका के कदम रसोई में आकर ठहरे, जहाँ अर्चना जी मतलब उसकी मम्मी रात के खाने की तैयारियों में लगी थी। अम्मा ये क्या सुन रही हूँ मैं? रोकते रोकते भी उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके शब्दों में झलकने लगा था और आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। अपनी शांत रहने वाली बेटी को गुस्से में देखकर अर्चना जी चौंक गई, क्या हो गया बेटा? उन्होंने चिंतित निगाहों से उसे देखा। वहीं राधिका ने नाराजगी से अपने गालों को फुला लिया, आप मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं? बस उसका एक सवाल और अर्चना जी सब समझ गईं। उन्होंने रसोई के दरवाजे की ओर देखा, जहाँ तीनों शैतान बंदरियां जैसी लटकी हुई थीं। सारा कांड करके अब तीनों मासूम बन रही थीं और जैसे ही माँ की नजर पड़ी, तीनों झट से दीवार के पीछे जा छुपी। अर्चना जी ने अफसोस से सर हिलाया, फिर नजरें राधिका की ओर घुमाई, जो अब भी नाराजगी भरी निगाहों से उन्हें ही देख रही थी। राधु बेटा, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है, आपके बाद आपकी तीन और बहनों की जिम्मेदारी हम पर है और आप तो अपने पापा की हालत देख ही रही हैं। हमें आप चारों की बहुत चिंता सताती है कि भगवान ना करे अगर कल को आपके पापा या हमें कुछ हो गया तो आप चारों का क्या होगा? कौन संभालेगा आपको? कौन आपका संरक्षण करेगा? कौन दुनिया की बुरी नज़र से आप चारों को बचाएगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपकी शादी कर दें और आपकी बहनों के बारे में सोचें। दो की भी अगर शादी हो जाती है तो हमें एक सहारा हो जाएगा। अर्चना जी ने उसे अपनी स्थिति और इस फैसले के पीछे की वजह समझाने की कोशिश की, पर राधिका उनकी बातों के विरोध में खड़ी हो गई। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको या पापा को, आपके रहते हमें किसी और के संरक्षण की जरूरत नहीं, और मैं बनूंगी आप सबका सहारा। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कुछ गलत नहीं होगा, मत टालिए मुझ पर अभी से शादी का दबाव। मेरी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है, अगर अभी आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी तो मेरे इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे सारे सपने टूट कर बिखर जाएंगे। आप मेरी नहीं सुन रही ना, अब मैं पापा से बात करूंगी। राधिका की आंखें झिलमिला गई थीं। उसे विश्वास था कि उसकी माँ भले उसकी बात ना समझे, पर उसके पापा, जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया है, उसकी बात जरूर समझेंगे। इतने में आशुतोष जी ने घर में कदम रखा और रसोई से आती आवाजें सुनकर वहीं चले आए। कुछ बातें वे सुन चुके थे जो उन्हें पूरी स्थिति से समझाने को काफी थे। राधिका की बातों को समझते हुए वे उसके पास चले आए और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अभी आपकी शादी नहीं करवा रहे, बस लड़का ढूंढ रहे हैं। लोगों को लड़का ढूंढने में ही सालों बीत जाते हैं, आप अभी से इतनी चिंता मत कीजिए। पहले हमें आपके लिए काबिल लड़का मिल जाए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएंगे। और रिश्ता जोड़ने से पहले हम उन्हें कह देंगे कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं, और अगर वे इसके लिए राजी हुए तभी उस घर परिवार से आपका रिश्ता जोड़ेंगे। हम माँ बाप हैं आपके, विश्वास रखिए हम पर, हम आपकी जिंदगी से जुड़ा इतना अहम फैसला यूं ही नहीं करेंगे। आप तो हमारी समझदार बेटी हैं, अपने पापा की बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बेटियों का घर बसाना, सही और काबिल जीवन साथी के हाथ में उनका हाथ सौंपना एक माँ बाप की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। हम भी बस अपने जीते जी आप चारों को अपनी गृहस्थी का होते देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटियां हमारे जीते जी सही हाथों में चली जाएं और हमारे बाद उन्हें किसी तरह की किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। फिर आप हमारी इकलौती बेटी तो नहीं है, आपके बाद हमें तीन के बारे में और सोचना है। अगर आपकी शादी अच्छे घर परिवार में हो जाती है तो हमें एक सहारा हो जाएगा और हम आपकी बाकी बहनों की जिंदगी संवारने पर विचार कर सकेंगे।
आशुतोष जी ने उसे जिंदगी की हकीकत से रूबरू करवाते हुए अपने इस फैसले के पीछे की वजह भी समझाई थी। ये अपनी बेटियों के लिए उनका प्यार, उनके उज्ज्वल भविष्य की चिंता और एक पिता के रूप में उनकी विवशता ही थी। वे चुप हुए तो अर्चना जी उसे समझाने लगी, बेटा शादी तो एक ना एक दिन सबको ही करनी होती है। बेटी के जन्म से माँ बाप को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है। हमारी चार बेटियां हैं और बेटा नहीं, और दहेज देने का सामर्थ्य भी नहीं। ऐसे में इतनी जल्दी कोई अच्छा घर नहीं मिलेगा। अभी से ढूंढना शुरू करेंगे तभी आपके लिए योग्य वर ढूंढ सकेंगे, और वक्त पर आपका विवाह कर देंगे तो आपकी बहनों के बारे में सोचेंगे। अगर हमें या आपके पापा को कुछ हो गया तो आप चारों को संभालने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए हमने और आपके पापा ने ये फैसला लिया है कि अब आपके लिए सुयोग्य वर ढूंढकर आपका विवाह करवा देना ही ठीक है। हमारी एक जिम्मेदारी खत्म होगी और एक सहारा भी हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई नौकरी तो आप शादी के बाद भी कर लेंगी। शायद आज आपको हमारी बात गलत लगे, पर हम जो कर रहे हैं आप चारों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। दोनों मिलकर उसे अपनी मजबूरी बताते हुए समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर राधिका का दिल कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे। नहीं समझना मुझे कुछ भी, नहीं हूं मैं समझदार, नहीं करनी मुझे अभी कोई शादी वादी। आप मुझे अपनी विवशता बता रहे हैं पर मेरी बात नहीं समझना चाह रहे। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अभी मुझे पढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं, इस घर के हालात सुधारने हैं, आप दोनों का सहारा बनना है, बेटी होने का फ़र्ज़ निभाना है। इतना कुछ किया आपने हमारे लिए, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, इसके लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतनी मेहनत की, और अब जब उस मेहनत का फल मिलने की बारी आई है तो आप मेरी शादी करवा कर मुझे इस घर से और ख़ुद से दूर भेजना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं आप कि शादी के बाद भी मैं पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा कर लूंगी? झूठ है ये। शादी के बाद कितनी लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं और उनके कितने सपने पूरे होते हैं सब जानते हैं। और अगर लाखों में कोई ऐसा घर और लड़का मिल भी गया जो मुझे और मेरे सपनों को समझे, तब भी अगर कल को मेरी नौकरी लगेगी तो उन पैसों से अपने ही परिवार की मदद करने से पहले मुझे उन लोगों से इजाज़त लेनी होगी। मेरे हाथ पैर उन रिश्तों की बेड़ियों से बंध जाएंगे। मैं आपके और अपने इस परिवार के लिए जो करना चाहती हूँ वो कभी नहीं कर सकूँगी। फिर क्या फ़ायदा होगा मेरे इतने सालों की मेहनत का? इसके बाद वो पल भर ठहरी, टूटे दिल की पीर चेहरे पर उभरी और अल्फाजों में दर्द खुलने लगा। मैं तो आपका बेटा बनकर आपका सहारा बनने के ख्वाब देख रही थी, पर आपने तो अपनी बेटी बनाकर जिम्मेदारी समझकर सर से उतारने की तैयारी कर ली। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। आज आप दोनों की बातों ने मेरे मन को बहुत ठेस पहुँचाई है। आप लोग मुझे अपनी विवशता बताकर शादी के लिए राज़ी करना चाहते थे ना? पर मैं अभी नहीं करूंगी शादी। मैं नहीं दूंगी अपने सपनों की कुर्बानी, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए राधिका अपनी हथेली से अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चली गई और कमरे में जाकर धाड़ मारकर दरवाज़ा बंद करते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। अचानक आए इस शादी नामक तूफान ने उसकी पूरी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया था। क्या क्या सोचा था उसने, और अब एक झटके में उसे सब टूटकर बिखरता नजर आ रहा था क्रमशः।